ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय में कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर दूसरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक इस अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों सहित मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि न्यायालय देश के राष्ट्रपति को निर्देश दे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान की व्याख्या कर सकता है। श्री धनखड़ ने कल नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति आवास में राज्यसभा प्रशिक्षुओं के 6 बैच को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। श्री धनखड़ ने कहा कि शक्ति का प्रयोग करते समय अत्यंत संवेदनशील होने की आवश्यकता है।
We have been extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। इस दौरान बोहरा समुदाय के सदस्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लाने के पीछे वर्षों की मेहनत के बारे में बात की और कहा कि इस अधिनियम को लाने का प्रमुख कारण ये था कि प्रचलित प्रणाली से अधिकतर महिलाएं, विशेष रूप से विधवाएं, पीड़ित हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी प्रणाली के क्रियान्वयन से परिवर्तनकारी परिणाम आए हैं। भारत की डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आकलन शीर्षक से नीति पत्र का हवाला देते हुए श्री गोयल ने बताया कि पारदर्शी और तकनीक संचालित सुधारों के कारण भारत का कल्याण दक्षता सूचकांक WEI 2013 के 0.32 से बढ़कर 2023 में 0.91 हो गया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से भ्रष्टाचार कम हुआ है, योजनाओं के लाभार्थियों के दायरे का विस्तार हुआ है और सब्सिडी आवंटन में कमी आई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। न्यायमूर्ति सुमेन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने हिंसा की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से कराने की मांग याचिका को खारिज कर दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य की मांग याचिका पर न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र है और यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र रूप से NIA जांच का आदेश दे सकती है। आज विश्व विरासत दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थल दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष की थीम है विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। ये दिवस सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के सम्मान और संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज देश के सभी संरक्षित स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है। IPL क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19वें ओवर में 166 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज बेंगलुरु में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। भारत के सौरभ कोठारी ने IBSR विश्व बिलियर्ड्स में पिछले विजेता पंकज आडवाणी को 725-480 अंक से हराकर खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ कोठारी IBSF और WBC विश्व बिलियर्ड्स पेशेवर खिताब जीतने वाले 3रे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।